एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूँ मेजबान एक।
और मैं हूँ मेजबान दो। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है, भले हम शायद इस पर ज्यादा सोचते न हों।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सूचना यानी इन्फॉर्मेशन की। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ हैं माइकल कीबल बकलैंड के विचार, खास तौर पर उनकी किताब इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी से।
हाँ, ये किताब असल में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो सूचना है जिसका हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, ये है क्या आखिर?
सही कहा, हम सब सुनते हैं इन्फॉर्मेशन एज, सूचना युग। हर तरफ डेटा, खबरें, सोशल मीडिया, बाढ़ सी आई हुई है।
पर बकलैंड यही सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में समझते हैं कि सूचना क्या है? ये सिर्फ डेटा का बहाना तो नहीं है?
हाँ, और आज के टाइम में तो ये और भी जरूरी हो गया है। एक तरफ एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी, और दूसरी तरफ गलत सूचना, फेक न्यूज का अंबार। तो ऐसे में बकलैंड के विचार मुझे लगता है एक नई नजर देते हैं।
बिल्कुल, वो यही बताते हैं कि सूचना सिर्फ कोई तकनीकी चीज नहीं है, ये हमारे समाज को, हमारी सोच को, यहाँ तक कि पावर इक्वेशंस को कैसे बनाती है, कैसे बदलती है।
और ये रिश्ता दो तरफा है ना? समाज सूचना को आकार देता है और सूचना समाज को।
सही कहा। तो चलिए इसी दिलचस्प रिश्ते को बकलैंड के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, उनकी किताब इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी के जो मुख्य विचार हैं उनके सहारे।
हाँ, तो शुरू करते हैं लेखक से ही, माइकल कीबल बकलैंड। ये सिर्फ कोई, आप कह सकते हैं, एवरी टावर वाला एकेडमिक नहीं है।
हाँ, है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन में एमेरिटस प्रोफेसर, और लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में उनका नाम काफी बड़ा है। मतलब उन्होंने सूचना को ऑर्गेनाइज करने, लोगों तक पहुंचाने की जो असल चुनौतियां होती है ना, उनको खुद झेला है, अनुभव किया है।
उनका नजरिया इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि वो लाइब्रेरी साइंस, आईटी और सोशल थ्योरी, इन सबको एक साथ लाते हैं।
हाँ, वो सिर्फ आज की डिजिटल दुनिया पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि सूचना सिस्टम्स का जो पूरा इतिहास है,
अच्छा,
प्राचीन लाइब्रेरियों से लेकर आज के डेटाबेस तक, उस पर नजर डालते हैं। उनका एक बहुत फेमस लेख भी है, इन्फॉर्मेशन इज थिंग, सूचना एक वस्तु के रूप में। ये उनके कई विचारों की नींव है कह सकते हैं।
और उनका वो यूरोपियन बैकग्राउंड और फिर अमेरिकी एकेडमिया का अनुभव,
हाँ, उससे भी एक क्रॉस कल्चरल नजरिया मिलता है। वो तकनीक की बारीकियों में नहीं खोते, बल्कि उसके सामाजिक असर पर,
सोशल इम्प्लिकेशंस पर।
बिल्कुल, उन बुनियादी सवालों पर जो तकनीक बदलने पर भी बने रहते हैं। इसीलिए सूचना और समाज के रिश्ते पर उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आते हैं किताब पर, इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी। इसका मकसद क्या है, क्या देना चाहती है ये किताब?
देखिए, ये किताब हमें सूचना शब्द के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं ना, उन तक ले जाने की कोशिश करती है, जो हमारी आम समझ है उससे कहीं आगे।
तो बकलैंड का पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इन्फॉर्मेशन शब्द ही बड़ा गोलमोल है, अस्पष्ट है।
हाँ बिल्कुल, हम रोज बोलते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मतलब बदल जाता है। तो इसे साफ करने के लिए उन्होंने सूचना के तीन मुख्य रूप या पहलू बताए हैं।
पहला है सूचना ज्ञान के रूप में, इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज।
हाँ, ये वो समझ है, वो जानकारी जो हमारे दिमाग के अंदर है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसे आप छू नहीं सकते, सीधे माप नहीं सकते।
ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होती है।
बिल्कुल। दूसरा रूप है सूचना प्रक्रिया के रूप में, इन्फॉर्मेशन एज प्रोसेस,
मतलब सूचित होने की क्रिया।
हाँ वही, कुछ नया जानने या समझने का जो एक्शन है, जो मेंटल प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको कुछ बताया और आपने उसे समझकर अपनी जानकारी बढ़ाई, तो ये जो प्रक्रिया हुई वो भी सूचना है।
अच्छा, और तीसरा?
और तीसरा जो शायद इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए सबसे अहम है, वो है सूचना वस्तु के रूप में।
इन्फॉर्मेशन एज थिंग,
वस्तु मतलब फिजिकल चीज।
हाँ
हाँ, एक तरह से ज्ञान या डेटा का वो मूर्त रूप जिसे आप देख सकें, छू सकें, जैसे कोई किताब, रिपोर्ट, डेटा फाइल, तस्वीर, नक्शा, यहाँ तक कि म्यूजियम में रखा कोई पुराना पत्थर का औजार भी।
अरे वाह।
ये वो चीजें हैं जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
और यही पर बकलैंड एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारी ज्यादातर टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम्स, वो इसी तीसरे रूप पर फोकस्ड है, सूचना वस्तु पर।
डेटा स्टोर करना, फाइलें भेजना, इसमें हम माहिर हो गए हैं।
सही कहा, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली मकसद तो उस वस्तु के जरिए इंसान के अंदर ज्ञान पैदा करना है या उस सूचित होने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि सूचना और समाज, इनका रिश्ता सिम्बायोटिक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं।
हाँ, दोनों लगातार एक दूसरे को बनाते बिगाड़ते रहते हैं। बकलैंड ये सवाल पूछते हैं कि हमारी जो सूचना प्रणालियां हैं, चाहे वो सदियों पुरानी लाइब्रेरी हो या आज का गूगल सर्च इंजन, वो हमारे सामाजिक ताने बाने को, पावर स्ट्रक्चर को, कल्चर को, हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं।
वो हमें एक तरह से चेतावनी देते हैं कि सूचना को सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ डेटा के तौर पर देखना एक भूल है।
हाँ, क्योंकि ऐसा करके हम उसके गहरे सामाजिक और कॉग्निटिव पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। बकलैंड हमें चैलेंज करते हैं कि हम सूचना को एक सोशल फोर्स के रूप में देखें।
एक ऐसी ताकत।
हाँ, एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि किसे क्या जानकारी मिलेगी, समाज में फैसले कैसी होंगे और कौन किनारे रह जाएगा।
तो चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, सूचना के वो तीन रूप, ज्ञान, प्रक्रिया और वस्तु।
हाँ, तो ज्ञान हमारे अंदर की समझ हो गई, अमूर्त। प्रक्रिया वो सीखने का एक्शन, और वस्तु वो ठोस चीज जिसमें जानकारी है। बकलैंड कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो है वो सीधे तौर पर इसी वस्तु को मैनेज करते हैं।
और यहीं पर असली चुनौती है। सिस्टम का लक्ष्य होना चाहिए कि वो इन वस्तुओं को, मतलब दस्तावेज, डेटा वगैरह को, ऐसे पेश करे कि लोगों के लिए सूचित होने की प्रक्रिया आसान हो।
बिल्कुल, और उनके अंदर असली ज्ञान या समझ पैदा हो सके। पर होता क्या है कि अक्सर सिस्टम वस्तु पर ही अटक जाते हैं और ज्ञान तक का सफर मुश्किलें बना देते हैं।
इस वस्तु वाले आइडिया को बकलैंड और खोलते हैं। वो कहते हैं कि सूचना वस्तु असल में साक्ष्य है, एविडेंस।
हाँ, और यहाँ वो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं व्यापक परिभाषा देते हैं।
क्या है वो परिभाषा?
उनके मुताबिक दस्तावेज कोई भी भौतिक वस्तु है जिसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
कोई भी भौतिक वस्तु?
मतलब सिर्फ कागज नहीं?
बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक जियोलॉजिस्ट के लिए पत्थर का टुकड़ा एक दस्तावेज है। वो धरती के इतिहास का सबूत दे रहा है।
अच्छा, एक इतिहासकार के लिए कोई पुरानी तस्वीर या कोई सिक्का, वो दस्तावेज है। एक डॉक्टर के लिए एक्सरे फिल्म, वो एक दस्तावेज है। एनालिस्ट के लिए डेटाबेस की एंट्री, म्यूजियम में रखी हड़प्पा की कोई मुहर, ये सब दस्तावेज हैं। कॉमन क्या है इनमें? ये किसी न किसी चीज का प्रमाण या साक्ष्य पेश करते हैं।
ये तो कमाल का नजरिया है। ये तो पुराने आर्काइव से लेकर आज के बिग डेटा तक सबको एक ही धागे में पिरो देता है।
हाँ, और ये भी दिखाता है कि सबूतों को इकट्ठा करना, उन्हें सहेजना, समझना, उनकी व्याख्या करना, ये चुनौती तो हमेशा से रही है, माध्यम भले ही बदलते गए हों।
लेकिन ये साक्ष्य, ये वस्तु अपने आप ज्ञान तो नहीं बन जाती?
नहीं बनती। यहीं पर वो दूसरी चीज काम आती है, सूचित होना की प्रक्रिया। और बकलैंड समझाते हैं कि ये प्रक्रिया कोई सीधी साधी लाइन नहीं है।
हाँ, मतलब सिर्फ दस्तावेज देख लेने से तो काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल, हमें उस पर ध्यान देना होता है, उसे परसीव करना होता है, उसे अपने दिमाग में प्रोसेस करना होता है और उसे सही संदर्भ में रखना होता है।
और हमारी अपनी पहले की जानकारी, हमारे विश्वास, हमारी जरूरतें।
हाँ, ये सब तय करता है कि हम उस दस्तावेज से क्या मतलब निकालेंगे, क्या सूचना हासिल करेंगे।
इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही दस्तावेज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सूचना दे सकता है,
या शायद कोई सूचना दे ही ना पाए। और यही इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स की लिमिट्स भी दिखती हैं। वो हमें दस्तावेजों तक पहुंचा सकते हैं, पर समझ की गारंटी नहीं दे सकते।
इसीलिए वो प्रासंगिकता, रेलेवेंस और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी के सवाल इतने अहम हो जाते हैं।
बिल्कुल,
ये जानकारी मेरे काम की है भी या नहीं, इस पर भरोसा करें या ना करें।
हाँ,
अब आते हैं सूचना प्रणालियों यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स पर।
बिल्कुल,
बकलैंड के लिए बहुत बड़ा टर्म है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन मेसोपोटामिया की वो मिट्टी की तख्तियां, मिस्र के पेपिरस स्क्रॉल, मध्ययुग के मठों की लाइब्रेरियां, आज के आर्काइव्स, म्यूजियम, स्कूल्स, और हाँ, आज के सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सब सूचना प्रणालियां हैं।
और इन सब का बुनियादी काम क्या है?
बुनियादी काम वही है, जानकारी या दस्तावेजों को इकट्ठा करना, एक्विजिशन, उन्हें व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, मेटाडेटा बनाना।
हाँ, फिर उन्हें सहेजना, स्टोरेज, और जब जरूरत पड़े तो उन्हें ढूंढ कर देना,
रिट्रीवल। लेकिन यहाँ बकलैंड एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी या चौंकाने वाली बात कहते हैं।
वो ये कि ये प्रणालियां कभी भी तटस्थ नहीं होती,
न्यूट्रल नहीं होती हैं। मतलब
ये कि जिस तरह से जानकारी को छांटा जाता है, उसे कैटेगरी में डाला जाता है, जिस भाषा में उसके बारे में लिखा जाता है, ये सब हमेशा उन सिस्टम्स को बनाने वालों के मूल्यों, उनके वर्ल्ड व्यू और उनके जाने अनजाने पूर्वाग्रहों को दिखाता है।
ये तो सोचने वाली बात है, जैसे किसी पुरानी लाइब्रेरी में किताबों को किस सब्जेक्ट के नीचे रखा है, ये उस जमाने की सोच बताता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं।
बिल्कुल। या आज गूगल का एल्गोरिदम तय करता है कि सर्च रिजल्ट्स में क्या ऊपर दिखेगा। ये फैसला पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये कुछ खास पैमानों को प्राथमिकता देता है जो गूगल ने तय किए हैं
और जिनका असर हम सबके सूचना अनुभव पर पड़ता है।
जाहिर है।
और यह हमें टेक्नोलॉजी की भूमिका पर ले आता है। एक आम सोच है कि नई तकनीक आती है और समाज बदल जाता है, जिसे तकनीकी नियतिवाद कहते हैं। बकलैंड इससे सहमत नहीं है।
हाँ, वो कहते हैं कि ये सोच थोड़ी ज्यादा ही आसान है। उनका तर्क है कि तकनीक अपने आप में कुछ नहीं करती, वो सिर्फ एक औजार है। हाँ, एक शक्तिशाली औजार जरूर है,
लेकिन उसका असर
इस बात पर निर्भर करता है कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति उसे कैसे अपनाते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आग का उदाहरण लें, उससे खाना भी पक सकता है, घर भी जल सकता है।
निर्भर करता है इस्तेमाल करने वाले पर।
बिल्कुल। तकनीक अक्सर समाज में जो पहले से ट्रेंड चल रहे होते हैं ना,
हाँ,
उन्हीं को और तेज कर देती है। अगर समाज में डेमोक्रेसी की लहर है तो तकनीक उसे फैलाने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर सत्ता के केंद्रीकरण या सर्विलेंस का ट्रेंड है तो वही तकनीक उसे और मजबूत बना सकती है।
डिजिटल तकनीक ने सूचना वस्तु को संभालना, कॉपी करना, स्टोर करना, भेजना, ये सब तो बहुत आसान कर दिया है।
हाँ, अविश्वसनीय रूप से आसान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बकलैंड हमें याद दिलाते हैं कि इसने ज्ञान की प्रकृति को या सूचित होने की प्रक्रिया के जो मूल मानवीय पहलू हैं, उन्हें नहीं बदला है।
अच्छा,
इसलिए हमें हमेशा पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारे सामाजिक लक्ष्य क्या हैं, और फिर देखना चाहिए कि तकनीक उसमें कैसे फिट हो सकती है। ये नहीं कि तकनीक को ही लक्ष्य मान लें।
इन विचारों का दायरा और भी बड़ा है। बकलैंड अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, संस्कृति, इन सब पर भी इनके असर की बात करते हैं।
हाँ, जैसे अर्थशास्त्र में सूचना का बिहेवियर बड़ा अजीब है। ये नॉन राइवलरस है, जैसे कोई गाना आप सुने या मैं, कम नहीं होता। इसे बनाने की पहली लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, ज्यादा हो सकती है, पर कॉपी करने की लागत, मार्जिनल कॉस्ट, बहुत कम। और ये एक्सपीरियंस गुड है, मतलब इसका फायदा इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है।
ई खासियतों की वजह से वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी और ओपन एक्सेस के बीच बहस चलती रहती है।
बिल्कुल। फिर पॉलिसी के लेवल पर गंभीर सवाल हैं। सूचना तक सबकी बराबर पहुंच कैसे हो, डिजिटल डिवाइड कैसे कम हो, सेंसरशिप कितनी सही है, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, खासकर जब सर्विलेंस इतना बढ़ गया है।
ये सब गहरे राजनीतिक और नैतिक सवाल हैं, सिर्फ तकनीकी नहीं।
हाँ, फिर वो ग्लोबल बनाम लोकल का मुद्दा है। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का स्थानीय ज्ञान, भाषाओं, संस्कृतियों पर क्या असर हो रहा है? क्या सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है,
या फिर नई तरह की मिलीजुली संस्कृतियां बन रही हैं?
हाँ, ये भी एक सवाल है। और आखिर में सूचना साक्षरता, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, बकलैंड के लिए ये सिर्फ कंप्यूटर चलाना सीखना नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा है।
बहुत ज्यादा। ये समझना कि सूचना सिस्टम कैसे काम करते हैं, उनमें क्या बायस हो सकते हैं, जानकारी की क्रेडिबिलिटी कैसे परखें और उसे नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल करें, ये आज के नागरिक के लिए एक बुनियादी जरूरत है।
तो अगर हम इन सब बातों से कुछ मुख्य संदेश निकालें, तो पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश है, सूचना एक सामाजिक रचना है, इन्फॉर्मेशन एज सोशल कंस्ट्रक्शन। मतलब सूचना कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो बस पड़ी मिल जाती है। क्या सूचना है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसे उस तक पहुंच मिलती है, ये सब हमारे समाज के मूल्यों, विश्वासों और पावर स्ट्रक्चर्स को दिखाता है।
जैसे लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन स्कीम्स, वो तटस्थ नहीं है, वो दुनिया को देखने का एक खास नजरिया पेश करती हैं।
बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है सूचना तक पहुंच का लोकतांत्रिक महत्व। एक हेल्दी डेमोक्रेसी और न्यायपूर्ण समाज के लिए जरूरी है कि सभी नागरिकों को जरूरी जानकारी तक पहुंचने का बराबर मौका मिले।
और जब ऐसा नहीं होता
तो समाज में जो पहले से असमानताएं हैं वो और गहरी हो जाती हैं। भारत में ही देखें, शहरों गांवों के बीच या अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच जो डिजिटल डिवाइड है वो इसका एक उदाहरण है।
तीसरा जो पहले से जुड़ा है, प्रणालियां तटस्थ नहीं होती, सिस्टम्स आरंट न्यूट्रल।
हाँ, लाइब्रेरी कैटलॉग से लेकर गूगल सर्च एल्गोरिदम तक हर सिस्टम में उसे बनाने वालों की सोच, उनके मकसद, उनके बायस शामिल होते हैं
और ये तय करता है कि हमें क्या आसानी से मिलता है और क्या नहीं। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ये हमारी सोच और समाज को कैसे बदल रहा है।
बिल्कुल। और चौथा जो आज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, सोचना साक्षरता नागरिकता का हिस्सा है।
इन्फॉर्मेशन लिटरेसी एज सिटीजनशिप।
ये सिर्फ डिग्री या टेक्निकल स्किल नहीं है।
नहीं, ये जानकारी को क्रिटिकली देखने, समझने, उसका मूल्यांकन करने और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की क्षमता है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक न्यूज के इस दौर में ये क्षमता एक जागरूक नागरिक होने के लिए अनिवार्य है।
बकलैंड की किताब से कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे उनका ये कहना कि सूचना प्रणालियां सामाजिक प्रणालियां हैं।
मतलब आप किसी ऐप या वेबसाइट को सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी से नहीं समझ सकते, आपको ये देखना होगा कि उसे किसने बनाया, क्यों बनाया, समाज पर उसका असल असर क्या है।
या ये विचार कि सूचना तक पहुंच शक्ति तक पहुंच है।
कितना सच है ये। इतिहास गवाह है, जिसके पास जानकारी कंट्रोल करने की ताकत होती है उसी के पास समाज में पावर होती है। आज भी डेटा और सूचना का कंट्रोल बहुत बड़ी ताकत है।
और ये भी कि वर्गीकरण का हर कार्य व्याख्या का कार्य है।
हाँ, मतलब जब भी हम जानकारी को किसी कैटेगरी में डालते हैं, उसे कोई लेबल देते हैं, तो हम असल में उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और कोई भी इंटरप्रिटेशन पूरी तरह ऑब्जेक्टिव या न्यूट्रल नहीं हो सकती, उसमें हमेशा एक नजरिया छिपा होता है।
बकलैंड का ये कहना भी याद रखने लायक है, सूचना साक्षरता सूचना समाज में नागरिक साक्षरता है।
बिल्कुल। ये फिर से वही बात कहता है कि आज के दौर में जानकारी को समझना और सही ढंग से इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना जानना।
और अंत में वो चेतावनी भी, डिजिटल डिवाइड सिर्फ तकनीक तक पहुंच से कहीं गहरा है।
हाँ, लोगों को सिर्फ डिवाइस या इंटरनेट दे देना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या उनके पास उस जानकारी को खोजने, समझने, उसका मूल्यांकन करने और अपने जीवन में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और सोशल सपोर्ट है।
तो ये तो काफी गहरे और जरूरी विचार हैं, लेकिन आम सुनने वाले के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है, हम इन विचारों का क्या करें?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी पढ़ते सुनते हैं, खासकर न्यूज और सोशल मीडिया पर, उसे थोड़ी आलोचनात्मक नजर से देखें।
सवाल पूछें खुद से।
हाँ, ये जानकारी मुझे क्यों दिख रही है, इसके पीछे किसका इंटरेस्ट हो सकता है, क्या ये सोर्स भरोसेमंद है।
और बेहतर रिसर्च करने की आदत डालें, मतलब सिर्फ गूगल पर पहला लिंक देखकर मान ना लें।
बिल्कुल। जानकारी के सोर्स तक जाने की कोशिश करें, देखें कि सबूत क्या है, बकलैंड का वो साक्ष्य, और हाँ, भारत में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का तो क्या ही कहें।
हाँ, वो तो एक अलग ही दुनिया है।
हर मैसेज पर यकीन करने से पहले दो बार सोचें, हो सके तो फैक्ट चेक करें, ये सब सूचना साक्षरता का ही हिस्सा है।
अपने इन्फॉर्मेशन डाइट को लेके भी सचेत हो सकते हैं, जैसे हम खाने पर ध्यान देते हैं।
हाँ बिल्कुल।
वैसे ही इस पर भी कि हम किस तरह की जानकारी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और अपना कीमती ध्यान कहाँ लगा रहे हैं।
प्रोफेशनल लेवल पर भी ये विचार काम के हैं, जो लोग सिस्टम बनाते हैं, IT वाले, लाइब्रेरियंस, नॉलेज मैनेजर्स।
हाँ, वो ज्यादा मानवीय, ज्यादा यूजर सेंट्रिक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम जो सिर्फ डेटा स्टोर ना करें बल्कि लोगों को सच में ध्यान पाने में मदद करें।
और संगठन भी डेटा को सिर्फ जमा करने के बजाय उसके उद्देश्य और उपयोग पर ज्यादा सोच सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जानकारी भेजना नहीं,
सरकारी निगरानी, सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं।
हाँ, और ये हमें डिजिटल इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाने को प्रेरित करते हैं, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत अहम भूमिका हो सकती है।
अंत में तो ये सब एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
बिल्कुल, जब नागरिक जानकारी को क्रिटिकली देख पाते हैं, सरकार से सवाल पूछ पाते हैं, अपने सूचना अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, तभी लोकतंत्र सही मायनों में काम करता है।
इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे यादगार या कहूँ चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए बकलैंड का सूचना को उन तीन हिस्सों में बांटना, वस्तु, प्रक्रिया, ज्ञान, बहुत ही उपयोगी लगा। वो चीज़ों को काफ़ी साफ कर देता है, और ये बात कि कोई भी सिस्टम, चाहे कितना भी तकनीकी क्यों ना हो, वो इंसानी मूल्यों और पूर्वाग्रहों से आज़ाद नहीं है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है।
मेरे लिए वो दस्तावेज की व्यापक परिभाषा बहुत दिलचस्प थी कि एक पत्थर, एक तस्वीर, एक डेटा फाइल सब सबूत के तौर पर दस्तावेज हो सकते हैं। और ये विचार कि तकनीक कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक औजार है।
हाँ, जिसे हमें समझदारी से अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना चाहिए।
तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो आगे सोच सकें।
बकलैंड कहते हैं कि सूचना प्रणालियां बनाने वालों के मूल्य दर्शाती हैं। तो सोचिए, आज हम जिन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अब एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनमें कौन से मूल्य झलकते हैं? वे दुनिया को हमारे सामने किस तरह पेश कर रहे हैं और किसके नजरिए से?
और क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसी सूचना प्रणालियां बनाएं जो ज्यादा लोकतांत्रिक हों, ज्यादा न्याय संगत हों, जो स्थानीय ज्ञान और विविध संस्कृतियों का ज्यादा सम्मान करें?
या फिर ये मौजूदा ताकतवर सिस्टम्स को बदलना अब बहुत मुश्किल हो गया है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और खिताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।